क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवभरत सिरतन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि विश्व हिंदी सचिवालय और MBC के मिले जुले सहयोग से क्षितिज कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उद्देश्य है हिंदी को बढ़ावा देने के वास्ते हिंदी जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारी देना। क्षितिज कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करने के लिए हिंदी के विद्वानों, साहित्यकारों व खोजकर्ताओं आदि को आमंत्रित करते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे मेहमान हैं श्री धनराज शंभू जी। श्री धनराज शंभू जी के बारे में दो शब्द। आप हिंदी शिक्षक हैं, सालों से हिंदी की सेवा में आप कार्यरत हैं। हाल ही में आपकी नियुक्ति पर्यवेक्षक के रूप में हुई है। इसके अलावा आप साहित्यकार हैं। अब तक आपकी 14 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप साहित्य के लगभग सभी विधाओं में अपना लेखन करते हैं। आपको स्थानीय और विदेशों में सम्मान प्राप्त हुए हैं और आप हिंदी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष हैं और आप रविवारीय पाठशाला के मुख्य अध्यापक भी हैं। श्री धनराज शंभू जी नमस्कार।
नमस्कार।
खुशी की बात यह है कि आज हमारे मध्य में आप यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ प्रश्न आपसे करते हैं। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के बीच अंतर संबंध और प्रभाव के बारे में कुछ हमें बताइए।
ज़रूर। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार और सादर नमन। हिंदी साहित्य और भाषा का संबंध मैं सोचता हूँ कि अटूट है। कहा गया है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं।
क्या बात।
अर्थात भाषा और साहित्य एक दूसरे की पूरक है। साहित्य का अर्थ ही सबकी भलाई करना है। सा का अर्थ सभी, सभी का और नित हित का अर्थ है भलाई करना। यानि साहित्य द्वारा समाज का भला हो तभी वह सच्चा साहित्य माना जा सकता है। साहित्य का संबंध भाषा से है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा साहित्य जीवित रहता है। फिर साहित्य अभिव्यक्ति के लिए कोई भी माध्यम व विद्या हो सकती है। गद्य, पद्य, कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है और घटनाओं, समस्याओं आदि को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि साहित्य और भाषा में विशेष संबंध है और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं।
सही बताया आपने। हिंदी साहित्य में इन दिनों कौन सी प्रवृत्तियाँ चल रही है, अर्थात किस प्रकार की विधाओं पर कार्य किया जा रहा है या लेख छापे जा रहे हैं, कुछ हमें बताइए।
देखिए डॉक्टर जी, हर समय में कोई ना कोई ऐसी प्रवृत्ति बहती रहती है जिस पर हमें विचार करना होता है। विशेष रूप से जो लेखक या साहित्यकार होते हैं उनको विशेष रूप से उस पर ध्यान देना पड़ता है, चाहे वह साहित्य, फिल्म, गीत या चित्रकारिता ही क्यों न हो। कोई भी कला हो समयानुसार वह बदलती रहती है। जिस साहित्य में तत्कालीन समय का प्रवाह या बहाव न हो तो दिलचस्प नहीं हो सकती। कल्पना के बोझ तले साहित्य डूब जाता है। कभी छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मानवतावाद, अकविता, कविता, नई कविता, इस तरह से हम देखते हैं कि समय समय पर इनका जन्म हुआ और धीरे धीरे वे लुप्त होते गए और नई नई विधाएं, नए नए धाराएं चलती रही। आज के युग को हम भूमंडलीकरण, विश्वग्राम या प्रौद्योगिकी की दुनिया कहते हैं, का युग कहते हैं। ऐसे में आज की रचनाओं में नवयुग की पुकार होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे लेखक अपनी रचना में परिवार के टूटन एवं विघटन का प्रश्न उठा रहा है। नशीली पदार्थ से कैसे बचा जाए, ऐसा प्रश्न उनके दिमाग में उठ रहे हैं। आतंकवाद से कैसे निपटाया जाए, ये सारे प्रश्न हैं। मूल्य के अवमूल्यन से संस्कार व चरित्र का गिरना तथा उससे कैसे बचा जाए, इस पर चिंतन करने के लिए हमारे साहित्यकार एकदम लुप्त है और एकदम से वे इसमें डूबे रहते हैं कि किस दृष्टि से, किस रूप में हम इससे पार पा सकें।
चलिए आज का हमारा जो मुख्य विषय रहा है वो इस प्रकार से है कि वैश्विक हिंदी के विस्तार में हिंदी साहित्य का योगदान। ठीक, क्या योगदान है हिंदी साहित्य का?
अच्छा, देखा जाए तो विश्व साहित्य और स्थानीय साहित्य, स्थानीय साहित्य तब तक स्थानीय रहता है जब तक वह सीमित अपने देश में, अपने दायरे में रहता है, और उसे विस्तार करने के लिए एक बड़ा सा मान लिया जाए फलक बनाते हैं। अच्छा साहित्य विश्वविख्यात हो ही जाता है, श्रेष्ठ साहित्य पूरे विश्व में अपने आप फैल जाता है, चाहे वह रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, प्रेमचंद साहित्य, कबीर साहित्य, सत्यार्थ प्रकाश, विदेशी साहित्य का मान लिया जाए लेखा जोखा लोग लेते रहते हैं। अगर हम हिंदी ही की ओर देखेंगे तो कुछ ऐसे पाश्चात्य साहित्यकार भी हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को अध्ययन किया और बाद में उसे विस्तृत कर दिया, जैसे कमिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, ओडोनेल स्मिकेल, इलियट, फिर है कॉलरिज, वर्सरवर, कीट्स, शेक्सपियर, मोलियर, ये सब कुछ ऐसे लेखक है। उन लोगों की रचनाएं इतनी मानिए सशक्त है कि उनको पूरे विश्व में पढ़ने की आवश्यकता है, और वह किस माध्यम से पढ़ा जाए, भाषांतर या रूपांतर के माध्यम से। तो यह जरूरी है कि हम रूपांतर या अनुवाद के माध्यम से अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मान लीजिए अगर अंग्रेजी फ्रेंच में हम रूपांतर करते हैं तो पूरा यूरोप बल्कि पूरी दुनिया उसे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रचनाओं को, चाहे वह हिंदी हो, चाहे किसी भी भाषा में कोई भी साहित्य हो, अगर हम रूपांतर के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकेंगे तो वही जाकर विश्व साहित्य बन सकता है।
और एक बात है इसमें, जैसे कि आप बता रहे थे किसी देश में जा कहीं पर भी हिंदी साहित्य के रचना की रचना होती हो, पुस्तकें लिखी जाती हो, तो उसमें जितने भी विचार आते हैं उसमें जो आंचलिकता आ जाती है, आंचलिकता के तत्व आ जाते हैं, वे सारी बातें हिंदी को विस्तार देने के लिए लाभदायक हैं।
हाँ, और साथ साथ जब साहित्यकार किसी देश, किसी जाति, किसी धर्म के बारे में लिखता है तो साहित्य के माध्यम से और भाषा के माध्यम से वह उस देश की भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान सभी के बारे में प्रकाश डालता है,
उसकी पूरी सभ्यता के बारे में उसका उल्लेखन होता है, और कि जो शब्दावलियां हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, हर साहित्य में होता है। तो इसके माध्यम से, साहित्य के माध्यम से भाषा को, हिंदी भाषा को बहुत विस्तार मिलता है।
बिल्कुल, और शब्द भंडार भी बढ़ जाते हैं, जैसे मॉरिशस के साहित्यकार क्रियोली के शब्द और यहाँ के जो लोक यानी गांव के जो लोकोक्तियाँ आदि है, जो हमारे पुराने पूर्वज लोग बोलते थे, उनका प्रयोग अपने साहित्य में करते हैं, और इससे शब्द भंडार भी बढ़ता रहता है।
किसी व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि हिंदी साहित्य में जहाँ पर भी लेखन होता है, किसी देश में भी जहाँ पर हिंदी प्रेमी बसते हैं, वहाँ लेखन कार्य करते हैं, वहाँ की जो मैं बता रहा था कि आंचलिकता, आंचलिक शब्द आ जाते हैं।
बिल्कुल,
तो एक प्रकार से जो हिंदी का जो परिवार है उससे बहुत, उसमें बहुत विस्तार मिलता है, क्योंकि कहीं पर भी कोई लेखक लिखता है तो मान लीजिए एक मुख्य बैंक है, आप कहीं भी किसी भी शाखा से आप उसमें शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, वे समग्र हिंदी साहित्य में वो शब्दावली आ जाती है और सभी लोग इसका फायदा उठाते हैं। कहाँ तक सहमत है आप?
आज मैं एकदम सहमत हूँ। आज यदि देखा जाए, जिस देश के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि वहाँ पर हिंदी बोली जाती या पढ़ाई जाती है, आज वहाँ पर भी हिंदी पढ़ाई बोली और समझी जाती है। आज ये माध्यम है ना, जो कंप्यूटर है, इंद्रजाल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो इसके माध्यम से भाषा इतनी तीव्रता से बढ़ रही है कि जो हिंदी से संबंधित नहीं है वे भी हिंदी पढ़ना या सीखना जान जाते हैं, क्योंकि आज हिंदी सिर्फ भाषा संस्कृति धर्म की भाषा नहीं, आज तो वह बाजार की भाषा भी बनने जा रही है, और इसके लिए लोगों को चाहिए कि वे हिंदी जाने।
थोड़ा सा हम मॉरिसन सारी साहित्यकार के बारे में, साहित्यकारों के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं।
बिल्कुल,
हिंदी में अपनी रचनाएं लिखते हैं साहित्यकार, कहानी हो, उपन्यास हो, जो भी हो, कविता हो, इसके बारे में आप मॉरिशसीय साहित्य के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
मॉरिशसीय साहित्य कहा जाता है कि भारत के बाहर यदि हिंदी साहित्य अधिक सशक्त है तो वह मॉरिशसी देश का हिंदी साहित्य है। मॉरिशस का हिंदी साहित्य अत्यंत ही लोकप्रिय, समृद्ध और सशक्त है। कहा जा सकता है कि मॉरिशसीय हिंदी साहित्य का श्री गणेश हमारे पूर्वजों द्वारा मौखिक रूप में हुआ था, फिर उसके बाद मौखिक रूप में वे रामायण गाते थे, सत्यार प्रकाश, हनुमान चालीसा आदि पर बातें करते थे, एक दूसरे से बोलते थे। लेकिन प्रकाशित रूप में जब डॉक्टर मनीलाल जी का जो पत्र था हिंदुस्तानी, उसमें 2 मार्च 1913 में गणेशी नाम के व्यक्ति ने, कवि ने प्रथम बार के लिए होली कविता को प्रकाशित किया।
तो आप लेखन भी करते हैं, थोड़ा सा हमें अपने लेखन के बारे में बताइए, किस विधा में अधिकतर लिखते हैं आप?
वैसे तो कई विधाओं में मैं लिखते आ रहा हूँ, जिसमें मुख्य विधा कविता है
जी।
कविताओं की 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, गजल है, 2 एकांकियों की पुस्तक प्रकाशित है, और मुझे यह सौभाग्य मिला कि मेरी एक कहानी संग्रह अभिलाषा नाम से प्रथमा के पाठ्यक्रम में साहित्य सम्मेलन द्वारा नियुक्त है, और साथ में और चेतना जाग उठी एक एकांकी संग्रह है जो उत्तमा प्रथम खंड के पाठ्यक्रम में संलग्न है। इसके अलावा मैं कहानी, कविता, गजल के अलावा एकांकी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि पहले से नाटक करते आया हूँ।
अच्छा अच्छा, तो इसके प्रभाव पर है,
उस पर है, और उसकी काफ़ी जानकारी है, काफ़ी वर्कशॉप कार्यशालाओं का भी मैंने आयोजन भी किया है और साथ में भाग भी लिया है, तो अनुभव कुछ है, इसलिए मैं इन सभी विधाओं पर कलम चला लेता हूँ।
तो इन सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे श्री धनराज शंभु जी। आप यहाँ पर आए और आपने अपने विचार हमारे मध्य में रखे, मैं सोचता हूँ कि हमारे पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा ये क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। आज का हमारा विषय रहा हिंदी के वैश्विक विस्तार में हिंदी साहित्य का योगदान। हमारे मेहमान थे श्री धनराज शंभु जी। आपने जो विचार व्यक्त किए वो बहुत मूल्यवान रहे। बस हम आपको यही धन्यवाद कहेंगे कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, और ये जो कार्यक्रम है वो रमा जी के सहयोग से आप लोगों तक हम पहुँचा पाए। तो डॉक्टर डेबोरा श्रीरतन जी को आगे दीजिए नमस्कार।
नमस्कार।